Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paranchikhani Vitranat Swayambhuhu Tasmat Paramupashyati Nantaratman कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा नमेक्षत् दावृत चक्षुः रम्भितत्वमेच्छन्। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र में बहुत अच्छी प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने आपके सामने रखा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीज है हमारी इच्छा। शास्त्र का एक नियम है, जानाति इच्छति प्रयतते प्राप्नोति। सबसे पहले व्यक्ति जानता है, जानने के बाद उस ज्ञान के विषय पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छा पैदा होने के बाद उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, और श्रम के बाद फिर उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले सत्संग है। सत्संग माने श्रवण, सत्संग माने महापुरुषों का संग, और संग से हमें आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का सामान्य बोध होता है, जिसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। शब्द हमें परोक्ष ज्ञान में ले जाता है, और वो परोक्ष ज्ञान हमें जिज्ञासा में ले जाता है। ज्ञान के बिना इच्छा का उदय संभव नहीं है। यदि ज्ञान ही नहीं है आत्मा परमात्मा अथवा अनात्म पदार्थों का, तो हमारे मन में इच्छा का भी उदय संभव नहीं है। इच्छा के पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान के पहले सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग से ज्ञान, और ज्ञान से इच्छा। और इच्छा की एक सबसे बड़ी विशेषता है, एक बार हमारे जीवन में इच्छा पैदा हो जाए तो इच्छा हमें बिना श्रम में ले जाए रहती नहीं है। इच्छा पैदा होने के बाद व्यक्ति चुप नहीं रहता है। फिर इच्छा एक पीड़ा है, इच्छा एक मन की अशांति है, चाहे वो भौतिक पदार्थों की हो, चाहे आत्मा की परमात्मा की हो। एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो व्यक्ति अपनी शांति खो देता है, सुख चैन खो देता है, क्योंकि इच्छा में एक पीड़ा है, वेदना नहीं होने की, पाने की। जैसे मीरा के जीवन में इच्छा पैदा हो गई परमात्मा को पाने की, चैतन्य महाप्रभु, बड़े से बड़े साधक लोग हुए जिनमें केवल इच्छा पैदा हो गई, और इच्छा पैदा होने के बाद वो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल पड़े और वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चल पड़ना कोई सुख की आकांक्षा नहीं थी, कोई बहुत गहरी शांति को पाने की भावना भी नहीं थी। वो भावना थी आत्मिक जो पीड़ा, जो अपने भीतर का खालीपन, जो भीतर की अशांति, उसको भरना था। क्योंकि इच्छा ही पीड़ा है, चाहे वो परमात्मा की इच्छा हो चाहे अनात्मा की इच्छा हो। और वो बहुत गहरा खालीपन है, वो नहीं होने की पीड़ा है। इच्छा का अर्थ है वो चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। और वो पीड़ा हमें ले जाती है श्रम में, पुरुषार्थ में। फिर व्यक्ति उस खालीपन को भरने के लिए पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, साधना करता है, और साधना के बाद फिर प्राप्त करता है। इस मंत्र में एक बहुत अच्छी बात बोली है, आत्मज्ञान बहुत से लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान को, स्वयं को पाना व्यक्ति नहीं चाहता है, लेकिन उस पाने में इच्छा का कितना भाव है। परम पूज्य महाराज श्री ने इसमें चार चीजें बताई हैं, प्रतिबंध को बिना जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपन नयाय यत्नम आरब्धम शक्यते इति। शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पहले जान तो ले कि हमारे मार्ग में, आत्मज्ञान को पाने में मार्ग में प्रतिबंध क्या है। और जब प्रतिबंध व्यक्ति जान लेता है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। सबसे पहला जो प्रतिबंध है हमारे बौद्धिक दो दुराग्रह है ना, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। दुराग्रह का मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीजें गलत समझते हैं, गलत अर्थों में समझते हैं, लेकिन उसको सही समझने में दुराग्रह है। आपने कई बार देखा होगा, आप उनको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं सामने वाले को, लेकिन वो समझता नहीं है, वो अपनी एक पकड़ के रखता है। आग्रह, दुराग्रह का मतलब होता है जिसमें दोष है, ऐसा आग्रह जो छोड़ना नहीं चाहता। और ये अध्यात्म के मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिबंध है, दुराग्रह। और दूसरा प्रतिबंध है कुतर्क। कुतर्क का अर्थ है, कई लोग पूछते हैं, आपको भी सुनकर थोड़ा उटपटांग लगता होगा। एक आदमी ने पूछा, रावण के 10 सिर थे तो करवट कैसे बदलता होगा। अब उसको रामायण से मतलब नहीं है, उसको नहीं राम से मतलब है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि रावण के 10 सिर हैं तो करवट कैसे बदलता हो। 10 सिर है तो कौन से सिर से बोलता होगा, 10 सिर है तो कौन से सिर से वो खाता होगा। उसकी पीड़ा सबसे बड़ी ये है, ये जानने की है। उसे वो मतलब नहीं, राम आदर्श कैसे थे, उनके जीवन में भगवत्ता कैसी थी, हम राम से क्या सीख सकते हैं, हम सीता जी से क्या सीख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें, इसी को शास्त्र ने कुतर्क बोला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा प्रतिबंध बाहर का नहीं, भीतर का है। ये प्रतिबंध हमारे बाहर की विषयों के प्रतिबंध नहीं है, ये सोच के प्रतिबंध है। और ये सोच के प्रतिबंध हमें सत्य से वंचित कर देते हैं, सत्य की तरफ जाने नहीं देते, सत्य के विषय में सोचने नहीं देते। और तीसरा जो प्रतिबंध है, बहुत बड़ा प्रतिबंध है, और वो बौद्धिक क्षमता का न होना। उसको शास्त्र ने कहा प्रज्ञा मान्द, वहां कुतर्क नहीं है, लेकिन प्रज्ञामंद है। बौद्धिक क्षमता नहीं, समझ नहीं। आप कितना भी उन्हें समझाने का प्रयत्न करें लेकिन समझते नहीं है। वहां दुराग्रह भी नहीं है लेकिन समझने की क्षमता नहीं है। एक छोटा सा ग्रंथ है तर्क संग्रह, बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बच्चों के लिए अनायास न्यायशास्त्र के पदार्थों का ज्ञान कराने के लिए तर्क संग्रह का निर्माण किया जाता है। वहां बच्चों की व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। वहां बच्चे शब्द का अर्थ केवल बच्चे नहीं है, वहां बूढ़े भी हैं। जो भी न्यायशास्त्र का पढ़ने वाला साधक है उसको यह वहां बाल शब्द के द्वारा कहा है। ग्रहण धारण पटुर बाल, जिसके अंदर ग्रहण करने की और उसको धारण करने की क्षमता है उसको बाल कहते हैं। अद्वैत वेदांत में भी ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और ग्रहण करने के बाद उसको धारण करने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। यदि आदमी की बुद्धि अच्छी ना हो तो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है और ग्रहण की हुई वस्तु अपने जीवन में धारण करने में भी वो समर्थ नहीं होता है। ये प्रतिबंध है, प्रज्ञा मान्द बहुत बड़ा प्रतिबंध है। और चतुर्थ जो प्रतिबंध है वो है विषयाशक्ति। आदमी बहुत बुद्धिमान है, कुतर्क भी नहीं करता है, दुराग्रह भी नहीं है, लेकिन बहुत गहरी विषयों की आसक्ति है। पांचों इंद्रियों के जो विषय शब्दादि, उसके प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। और वो बहुत गहरी आसक्ति आत्मज्ञान में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। और आपके श्लोक के मंत्र के प्रथम पाद में यही बात कही है, परांचि खाणे वितरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्म। ये विषयाशक्ति का बहुत बड़ा प्रतिबंध, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां परांचि खाणी। परांची खानी का अर्थ है जो बाहर जाती है, पांचों इंद्रियों का स्वभाव बाहर जाना। खानी माने स्थान, ये द्वार अपने गोलकों में स्थित होकर ये इंद्रियां बाहर चली जाती हैं। और बाहर जाने के बाद बाहर के संस्कारों को, उसकी संवेदनाओं को, उसके ज्ञान को हमारे भीतर भेज देती हैं, विषयों के होने की सूचना देती है। और विषयों के होने की सूचना इतनी गहरी होती है उसके प्रति हमारे मन में आसक्तियां पैदा हो जाती हैं। और ये वितरणत स्वयंभू, और ये सबसे बड़ी हमारी जो पीड़ा है ना, यही तो है, ये हमारी बहिर्मुखता, ये विषयों के प्रति इंद्रियों की जो गति है और हमारे भीतर वासनाओं का आसक्तियों का निर्माण है, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। और इस पीड़ा को व्यक्त किया मित्रत कहकर, भाष्यकार कहते हैं वितरणत माने हिंसितम, ये बहुत बड़ी हिंसा हुई। और ये हिंसा दूसरे की नहीं है, दूसरे के प्रति नहीं, ये अपने प्रति है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान हम दूसरे से रहते कि अपने से रहते हैं? हम बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने से, दूसरे से नहीं है। हम कहते जरूर है कि हम दूसरे से परेशान हैं, हमें कोई दूसरा परेशान कर रहा है, लेकिन दूसरे से परेशान नहीं, हम अपने आप से सबसे ज्यादा परेशान हैं। हम अपने आंख से परेशान हैं। हम आंख से परेशान इसलिए नहीं कि आंख में खुजली हो रही है, हम आंख से परेशान इसलिए नहीं कि आंख बहुत दर्द दे रही है, आंख से परेशान हम इसलिए भी नहीं कि आंख में कोई रोग हो गया है, चश्मा लग रहा है। आंख से परेशान इसलिए है क्योंकि आंख बाहर खुलती है। हम कान से इसलिए परेशान हैं क्योंकि कान हमारी बाहर खुलती है। हम अपने रसनेन्द्रियों से इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो बाहर खुलती है, इसके द्वार बाहर हैं। बाहर के पदार्थों को देखने के बाद ये आंख उन बाहर के पदार्थों को भीतर ले आती है, और सबसे ज्यादा परेशानी वही तो है। अब वो वस्तु बाहर नहीं रहती, वो भीतर आ जाती है। ये अनात्म पदार्थ बाहर हैं, ये हमारे अशांति के कारण नहीं है, लेकिन वही बाहर के पदार्थ जब संवेदना बनकर हमारे भीतर आ जाते हैं आंख के द्वारा, कान के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा, त्वचेन्द्रिय के द्वारा, तो हमारे भीतर एक पागलपन पैदा करते हैं। एक बार हम लोग गए थे हरिद्वार, 10-15 लोग थे, वृंदावन से गाड़ी निकली, इंदौर के लोग थे। हम आनंद मना रहे थे, सोच रहे थे मन ही मन, जाएंगे हरि की पैड़ी, नहाएंगे, आनंद मनाएंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो साथी थे वो एक ही चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा थी छोले भटूरे की। वो आपस में बहुत रुचि ले रहे थे, हरिद्वार जाएंगे और वहां पर हम सबसे पहले छोले भटूरे खाएंगे। और एक आदमी तो इतना उत्साह से कह रहा था, मेरे दोस्त ने मेरे को बता दिया है, हरिद्वार जाओगे और छोले भटूरे नहीं खाओगे, हरिद्वार जाने की यात्रा व्यर्थ है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, भजन करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, लेकिन कोई भजन नहीं कर रहा था। आश्चर्य की बात, गिरीश भाई वहां जब हम गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी वही छोले भटूरे की दुकान पर खड़ी कर दी। हमने कहा पहले चले हरि की पैड़ी, ये क्या है, ये पागलपन कहां से पैदा हुआ, ये रसनेन्द्रिय का पागलपन है। वो परमात्मा के भुलावे में ले गया हो, यात्रा के उद्देश्य से भटका दिया। और ये बहुत बड़ी पीड़ा है, ये आध्यात्मिक जीवन की बहुत बड़ी पीड़ा है। और हमारे सामने केवल एक ही रसनेन्द्रिय नहीं है, ये अनेकों विषय हैं। ये पांचों इंद्रियां हमें भटकाती हैं, ये पांचों इंद्रियां हमें अपने उद्देश्य से भटकाती हैं, हमें भुलावे में ले जाती। हम अपने जीवन के बहुत बड़े से बड़े उद्देश्यों को निर्मित करते हैं और ये इंद्रियां हमें भुलावे में ले जाती हैं, हमें उद्देश्य से भटका देती हैं। और इसीलिए यहां पर श्रुति ने कहा वितरणत ये बहुत बड़ी हिंसा हुई, ये जीव के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और ये अन्याय की बाहर से नहीं है, ये हमारे प्रति हिंसा अपने द्वारा है। और एक बड़े गहरे शब्द का प्रयोग किया, स्वयंभू, ये कहीं ये कृत्रिम नहीं है, ये स्वाभाविक है, जन्मजात इंद्रियों का स्वभाव है, जो हमारे भीतर विश्वास शक्ति का निर्माण कर परमात्मा के मार्ग से भटका देना। और ये वितरणित स्वयंभू कहकर श्रुति हमें सावधान कर रही है कि हम ये न भूले, परमात्मा का मार्ग इंद्रियों से होके नहीं गुजरता है। हम साधकों को श्रुति सावधान कर रही है, ये मार्ग इंद्रियों के द्वारा गुजरता नहीं। हम इन संपूर्ण इंद्रियों को साथ लेकर, विषयाशक्तियों को लेकर, इन संपूर्ण विषयों को लेकर जाना चाहते हैं परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ, तो ये संभव नहीं है। इन इंद्रियों का स्वाभाविक जो भाव है वो बहिर्मुखता है, परमात्मा के तरफ से हटाने का भाव। और आप उसको कितना भी कोशिश करें, वो इंद्रियां परमात्मा का मार्ग नहीं बन सकती। ये विषयों का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग नहीं। और इसीलिए श्रुति ने कहा कि इसका स्वभाव है वितरणत स्वयंभू, तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्म। ये इंद्रियां बाहर के पदार्थों में हमें ले जाती हैं, बाहर के पदार्थ दिखाई देते हैं। नान्तरात्मन, आत्मा को नहीं दिखाती। कश्चित ही रहा, यदि पाना है परमात्मा को, जानना है अपने आप को, तो मार्ग क्या है फिर? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को पाना संभव नहीं है, जानना भी संभव नहीं है। ये सारी इंद्रियां खबर देती हैं बाहर के पदार्थों की और जगाती हैं हमारे अंदर विषयाशक्ति, पाने का पागलपन। तो फिर मार्ग क्या है, जानने का मार्ग क्या है? श्रुति ने कहा कश्चित थी रहा। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। धत्ते इति धीरः, माने जो धारण कर सकता है, माने जो विचलित नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अक्सर हम विचलित हो जाते हैं, हम सत्य को धारण नहीं कर पाते हैं। और सत्य को पाने का सर्वोत्तम उपाय सत्य को धारण करना है। हमारी इंद्रियां तो बाहर के पदार्थों को दिखा देती हैं, असत्य को सत्य के रूप में दिखा देती हैं। जो महत्वहीन विषय हैं उसके प्रति महत्वबुद्धि जगा देती हैं। और हमें भीतर से बाहर कर देती है। लेकिन हमें नचिकेता होना है। न चिनोति इति नचिकेता, यह ची चयने धातु है। और यहां ची धातु का दूसरा भी अर्थ है, स्रवित होना, बहना, बाहर होना। और नचिकेता का अर्थ होता है जो बाहर के पदार्थों का चयन नहीं करता है, जो बाहर के पदार्थों को देखकर स्रवित नहीं होता है। जहां पर वो है वहां से वो च्युत नहीं होता है। ये नचिकेता, माने जहां है वहीं, बालक नचिकेता के सामने आचार्य यम ने प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि बेटा मांगो, दुनिया की संपत्ति मांगो, राज्य मांगो, वैभव मांगो, तुम जो चाहे मांगो, लेकिन आत्मज्ञान को छोड़कर मांगो। और उस समय यदि हम होते तो ईमानदारी से हम मांग लेते, हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य मांग लेते। हमें स्वास्थ्य से मतलब है, हमें आत्मा से थोड़ी मतलब है।